ठीक है। اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ठीक है। इन दुआओं के साथ और नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर दुरूद शरीफ पढ़ने के साथ हम सीरत क्लास का आगाज करते हैं, शुरू करते हैं। तो सीरत की इस क्लास में हम अपनी टाइम लाइन के हिसाब से, हमारी टाइम लाइन चल रही है राइट, तो हम कहाँ पर खड़े हैं, कोई बताएगा क्लासेस में से कोई कि हम कहाँ खड़े हैं टाइम के एतबार से? जी तहवील क़िबला, हाँ ये तो इवेंट था, इवेंट था तहवील क़िबला, ठीक है, लेकिन साल कौन सा था? साल पूछ रहे। जी माशाल्लाह, यहाँ तो सही जवाब दे दिया, यहाँ साल कौन सा, फिफ्थ हिजरी तो बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, यहाँ भी सही जवाब आ गया। और गर्ल्स में किसी को नहीं याद, सेकंड हिजरी, ठीक है ना, यहाँ भी सेकंड हिजरी सही जवाब दिया। दो तीन स्टूडेंट्स हमारे पास ऑन साइट भी हैं, घर वाले जो होते हैं बच्चे, तो उन्होंने भी सेकंड हिजरी जवाब दिया था, और गर्ल्स बॉयज दोनों में माशाल्लाह सही जवाब मिल गया। सेकंड हिजरी यानी हिजरत के जिस साल हिजरत हुई थी उस साल को तो कहते हैं फर्स्ट हिजरी, ठीक है ना, और उसके बाद जो साल आया मुहर्रम से जो साल शुरू होता है राइट, हम कौन से वाले महीने में हैं अभी, महीना भी कौन सा चल रहा है, मुहर्रम, फर्स्ट मंथ ऑफ द हिजरी कैलेंडर, इस्लामिक कैलेंडर, ठीक है, तो मुहर्रमुल हराम से साल शुरू होता है सेकंड हिजरी। तो सेकंड हिजरी के अंदर काफी सारे वाकयात हुए, ऑफकोर्स हर साल में ही बहुत सारे वाकयात हुए, तो सेकंड हिजरी के अंदर भी वाकया तो बहुत सारे हुए, लेकिन उनमें से एक बहुत मेजर वाकया जो था वो था तहवील क़िबला, ठीक है, यानी क़िबला चेंज हुआ, बैतुल मुक़द्दस से चेंज होकर के बैतुल्लाह काबतुल्ला, ठीक है। तो इसके बारे में सारी तफसील हम डिस्कस कर चुके हैं, किसी को अगर कोई सवाल पूछना हो तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है, तहवील क़िबला के बारे में। अच्छा, उसके बाद जो है ना वो जिस किताब को हम फॉलो कर रहे हैं तो उस किताब में फिर तहवील क़िबला से ही सॉर्ट ऑफ रिलेटेड जो है ना वो एक तफसील लिखी है, वो क्या तफसील है, वो है अस्हाब सुफ़ा के बारे में। सुफ़ा, सुफ़ा किस चीज़ को कहते हैं, सुफ़ा जो है वो एक ऐसी जगह को कहते हैं कि जहाँ पर कुछ साया वगैरह पड़ा हुआ, जिसके ऊपर थोड़ी सी छत वगैरह बनी हुई, छत, साइबान कहते हैं ना उर्दू में, ठीक है, तो जरा एक ऐसी जगह कि जहाँ पर एक थोड़ा सा सॉर्ट ऑफ एक स्पेसिफिक सी जगह है जिसमें साये के लिए कोई इंतजाम किया गया, ठीक है। खैर, ये तो लफ्ज सुफ़ा का मानी है, ठीक है, लेकिन ये लफ्ज जो है वो खास तौर पे इस्तेमाल किस जगह के लिए होता है, चबूतरा, चबूतरा का जो लफ्ज है वो एज सच एक्चुअली नहीं है, ठीक है, मतलब चबूतरे से जो जहन में आता है ना वो होता है कि जैसे कि आपने कोई सॉलिड सी जमीन बना दी और वो जमीन जो है वो थोड़ी सी ऊंची बनी हुई हो तो उसको चबूतरा कह देते हैं, ठीक है, लेकिन ये एक्चुअली उठा हुआ चबूतरा ना पहले था ना अब है, सुफा की जो जगह है ना ये उठा हुआ जमीन से ऊंचा चबूतरा ना पहले था कभी ऐसा और ना अब है, ठीक है, मस्जिद नबवी के अंदर एक चबूतरा नजर तो आता है लेकिन वो असल में सुफा का चबूतरा नहीं है, ठीक है ना, जो औरतों की साइड पे मस्जिद नबवी में जब सलाम पेश करने के लिए खवातीन जहां से आती है ना तो वहां पर एक जमीन से ऊंचा एक चबूतरा, ठीक है, नजर आता है लेकिन वो असल में सुफा की जगह नहीं है, ठीक है, वो गलतफहमी है कि वो सुफा की जगह है, वो एक्चुअली गार्ड्स के बैठने की जगह, ठीक है, बहरहाल वो किताब में हमने पढ़ा था। अच्छा, तो ये जो सुफा का जो चबूतरा था ना, यानी सुफा की जो जगह थी, साहिबान या सायदार जगह जो थी ना, ये किस तरफ थी, ये थी अगेंस्ट द क़िबला वाली साइड पे, ठीक है, तो यानी पहले जो क़िबला था वो नॉर्थ डायरेक्शन में था ना, तो वहीं पर जो है वो सुफा की जगह थी, अब जो है ना, जब ये डायरेक्शन ऑफ किबला चेंज हो गया तो किबला तो बिल्कुल ऑपोजिट साइड में चला गया, जो कि अब है साउथ की डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, तो सुफा की जगह जगह जो है ना वो वहीं पर रही, जो कि अब सुफा की जगह जो है वो मस्जिद की बैक साइड में हो गई। पहले वो मस्जिद की जो है वो फ्रंट साइड में, ठीक है, क्योंकि उसी तरफ किबला था, नॉर्थ की डायरेक्शन में, अहद के पहाड़ की डायरेक्शन में, वहीं पर किबला था। अब किबला तो चेंज हो गया, ठीक है ना, लेकिन सुफा की जगह जो है वो पीछे की तरफ ही रही। ठीक है, अच्छा, अब ये सुफा जो थी, ये जगह, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी अहमियत क्या है, तो वो ये थी कि यहाँ पे ना इस जगह के ऊपर जो है वो बहुत सारे मुसलमान आकर के रहते थे। ठीक है, ये वो लोग होते थे कि जिनकी कोई बाकायदा फैमिलीज नहीं होती थी, जिनका अपना कोई घर नहीं होता था मदीना मुनव्वरा के अंदर। ठीक है ना, ये अनमैरिड किस्म के लोग थे, नौजवान थे, अनमैरिड थे या मुसाफिर थे। मुसाफिर का मतलब क्या कि किसी और शहर में, किसी और गांव देहात में तो इनका घर होगा, लेकिन मदीना मुनव्वरा में तो इनका कोई घर नहीं था ना, क्योंकि ये तो मुसाफिर थे, ट्रैवलर्स थे, यहाँ पर आए थे नबी अलैहिस्सलाम से दीन सीखने के लिए आए थे, मुसलमान होने के लिए आए थे। ठीक है, तो ये लोग जो है ना फिर मस्जिद के अंदर कयाम किया करते थे, स्टे किया करते थे मस्जिद में। ठीक है, और ये जो थे ना, ये इस साइड पे जहां पर कि नमाज नहीं हो रही होती थी, वहां पर ये लोग जो है ना, इनका यानी इनका सामान अगर कोई होता था, बेचारे वैसे तो बहुत ज्यादा गरीब होते थे, लेकिन अगर कोई भी सामान वामान था, कपड़े वपड़े थे, तो वहीं पर रखते थे, वहीं पे। जिस तरह से अगर जो लड़के हैं वो मस्जिद में जाते हैं ना, तो मस्जिद में जाकर के कभी आपने देखा होगा कि जब एतिकाफ होता है रमजान मुबारक के अंदर, तो एतिकाफ के दिनों के अंदर यही माहौल होता है कि लोगों ने अपना सामान, कपड़े वगैरह ला करके मस्जिद के अंदर रखे हुए होते हैं, और वहीं पर वो लेटते हैं, वहीं पर वो उठते हैं, वहीं पर जो है वो सारे काम कर रहे होते हैं, बस नमाज के लिए जो है वो जमात के अंदर आके शामिल हो जाते हैं। तो गोया कि इसी किस्म का वहां पर माहौल था। ठीक है, तो ये जो लोग थे ना, इनके पास ना तो फैमिली होती थी, ना इनका जो है ना कोई बाकायदा बिजनेस, ट्रेड, तिजारत, भाई इस किस्म का कोई काम नहीं होता था। ये यहाँ पर सिर्फ एक मकसद से आके रहते थे, फुल टाइम स्टूडेंट्स ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है ना, फुल टाइम स्टूडेंट्स थे। तो इस तरीके से ये जो लोग थे, ये क्या कहलाएंगे अगर आज के एतबार से देखा जाए, तो ये जो जगह थी ना सुफा, इसको क्या कहेंगे? ठीक है, अगर आपसे पूछें कि आज के हिसाब से देखा जाए तो इस जगह को, सुफा वाली जगह को क्या कहेंगे? ठीक है, चले माशाल्लाह, यहाँ तो बिल्कुल सही जवाब आ गया, मदरसा। ठीक है ना, मदरसा। और मदरसे को इस इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में मदरसा को स्कूल कहते हैं। ठीक है ना, तो दिस वॉज द फर्स्ट मदरसा ऑफ इस्लाम, इस्लाम का ये पहला मदरसा था। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर टिपिकली जो है वो लफ्ज मदरसा जो है ना, वो सिर्फ उस स्कूल को कहा जाता है कि जहां पर दीनी तालीम हासिल की जा रही है। ठीक है ना, लेकिन जो लोग सऊदी अरब में रहते हैं या किसी और अरब कंट्री में रहते हैं, तो उन्होंने देखा होगा कि हर स्कूल के बाहर जो है ना वो लफ्ज मदरसा लिखा हुआ होता है, क्योंकि एवरी स्कूल इज अ मदरसा, चाहे वो दीनी तालीम का हो, चाहे वो दुनियावी तालीम का हो। ठीक है ना, तो टिपिकली वैसे, क्योंकि उस जमाने में दुनियावी तालीम के ऐसे कोई सिस्टम्स तो नहीं होते थे, यूनिवर्सिटीज जो होती थी दुनियावी तालीम की वो रोम और पर्शिया वगैरह के अंदर होती थी। यहाँ पर कोई ऐसे फिलोसफी और कोई इस किस्म की जो है वो एस्ट्रोलॉजी वगैरह तो नहीं पढ़ाई जा रही होती थी, तो इस वजह से इस मदरसे के अंदर जो है वो सिर्फ दीनी तालीम ही होती थी, यानी कुरान मजीद की तालीम होती थी, नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर अल्लाह ताला की आयात नाजिल होती थी, नबी अलैहिस्सलाम सारे मुसलमानों को सुनाते थे, और ये जो सुफा के अंदर लोग होते थे ये भी सुनते थे, और उनको जो है फिर वो याद कर लिया करते थे। ठीक है ना, बाकी जो मुसलमान होते थे ना, जो कि सुफा में नहीं रहते थे, जो कि अपने घरानों में रहते थे, बिकॉज दे हैड फैमिलीज, तो वो लोग जो है ना फुल टाइम स्टूडेंट्स नहीं होते थे नबी अलैहिस्सलाम के। ठीक है ना, वो लोग पार्ट टाइम स्टूडेंट्स होते थे, यानी फजर की नमाज में आ गए, ठीक है ना, वहां पे आकर के नबी अलैहिस्सलाम से कुछ बातें सुन ली, फिर उसके बाद वो काम पे चले जाते थे, अपने फार्म्स में चले जाते थे या मार्केट में चले जाते थे, वहां पर वो काम किया करते थे। ठीक है, और फिर उसके बाद जब असर की नमाज होती थी, तो फिर वापस मस्जिद नबी में आ जाते थे, फिर कुछ सुन लिया करते थे, फिर मगरिब की नमाज में वापस आ जाते थे, फिर ईशा की नमाज में आ जाते थे। ठीक है ना, तो ये लोग जो थे ना, बाकी लोग जो थे पार्ट टाइम स्टूडेंट्स, लेकिन सुफा के जो लोग थे ये फुल टाइम स्टूडेंट्स, गोया के दे वर जिसको कहते हैं ना डॉर्म करते हैं जो स्टूडेंट्स, हॉस्टल में जो रहते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना, मुस्तकिल वो यूनिवर्सिटी के अंदर ही रहते हैं, कॉलेज के अंदर ही रहते हैं, स्कूल के अंदर ही रहते हैं, ठीक है ना, तो दे वर लाइक डॉर्मिंग स्टूडेंट्स, ठीक है ना, जो सुफा के लोग थे, ठीक है। तो अब इन लोगों का चूंकि कोई कमाने का जरिया तो होता नहीं था, राइट, जो फुल टाइम स्टूडेंट्स होते हैं कॉलेज के यूनिवर्सिटी के, तो भाई वो किताबें पढ़ेंगे, टीचर्स से इल्म हासिल करेंगे, ठीक है ना, जूनियर स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा भी तो होता है ना कि जो स्टूडेंट्स सीनियर हो जाते हैं, सीनियर बैच में चले जाते हैं, तो फिर वो नए आने वाले स्टूडेंट्स को भी तो पढ़ाते हैं ना, एज टीचिंग असिस्टेंट के तौर पर पढ़ाते हैं, राइट, टीचिंग असिस्टेंट्स का भी तो एक कॉन्सेप्ट है ना, वो खुद टीचर नहीं होते, सीनियर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो खुद टीचर नहीं होते, लेकिन वो टीचर्स असिस्टेंट होते हैं, ठीक है ना, जैसे कि माशाल्लाह आलिमा कोर्स होता है, हमारे यहाँ भी होता है आलिम कोर्स होता है, तो उसके अंदर तकरार ग्रुप्स होते हैं, तो तकरार ग्रुप्स के अंदर जो है ना वो कोई एक स्टूडेंट जो कि जरा ज्यादा बात समझ रही होती है, तो वो दूसरे स्टूडेंट्स को जो है ना वो तकरार करवाती है, यानी रिपीटेशन करवाती है, ठीक है ना, तो वो टीचर्स असिस्टेंट के तौर पर बन जाती हैं, क्लास कोऑर्डिनेटर के तौर पर बन जाती हैं। उसी तरीके से यहाँ पर पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले दोनों तरह के लोग होते थे, ठीक है, इनके बाकायदा एक एक कोऑर्डिनेटर भी होते थे, कोई बताएगा कि इनकी क्लास के कोऑर्डिनेटर कौन होते थे, सुफा की क्लास के, जिनको के कुछ लोग मॉनिटर भी कह सकते हैं, क्लास मॉनिटर्स, पाकिस्तान इंडिया के अंदर वो स्कूलों के अंदर ना तो हर क्लास के अंदर एक मॉनिटर बना देते हैं, किसी को प्रीफेक्ट बना देते हैं, ठीक, वो कौन होते थे, क्लास मॉनिटर, जो कि क्लास के कोऑर्डिनेशन करता है, स्टूडेंट्स जो है वो देखता है कि कौन स्टूडेंट आ रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसको किस चीज की जरूरत है, किसको, इस किस्म की जो बातचीत होती है ना, अच्छा वो टीचर से कोऑर्डिनेट भी करता है और स्टूडेंट से भी कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है ना, वो क्लास कोऑर्डिनेटर यहाँ पे लिखा, तीन स्टूडेंट्स ने लिखा हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु, नहीं, एक्चुअली दैट इज नॉट राइट, अबू हुरैरा तरह नहीं होते थे, नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो टीचर थे, है ना, वो तो यानी सबसे बड़े प्रिंसिपल टीचर नबी अलैहिस्सलाम, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु, नहीं, बिलाल रज़ान की जो है वो बाकायदा फैमिली थी, घर था, अली रज़ान, नहीं, अली रज़ान भी नहीं थे, माशाल्लाह सारे मिस कर रहे हैं उनको, क्योंकि उनका अभी तक वैसे जिक्र आया नहीं है हमारी क्लास में। हजरत अबू बकर रज़ान, अबू बकर रज़ान जो है वो तो बाकायदा फैक्ट्रीज चलाते थे, वो तो फुल टाइम जो है वो माशाल्लाह बिजनेस मैन थे और इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ठीक है, अब माशाल्लाह सारे उसको कहते हैं हमारे यहाँ तुक्का मारना, अब तो क्या मारना शुरू हो गए लोग, किसी ने लिखा अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, नहीं, वो भी नहीं थे, ठीक है, तो क्लास मॉनिटर कौन थे, वो थे, एक्चुअली उनका तस्करा तो हमने बड़ा लंबा किया है सीरत क्लास के अंदर, तो बहुत लंबी उनकी कहानी आपके सामने हमने बयान करी है, अब समझ में आ गया, ऑन साइट जो स्टूडेंट्स है ना उन्होंने सही जवाब दे दिया जी, हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन, ठीक है ना, माशाल्लाह आप लोग भी समझ गए, सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन, ये थे क्लास मॉनिटर, ठीक है ना, क्लास कोऑर्डिनेटर, वाय, अब ये भी बता दें क्यों होंगे ये सबसे ज्यादा, यानी क्लास मॉनिटर क्यों बनाया गया उनको, या क्यों उस किस्म का वो रोल उनको मिल गया, वजह क्या थी, ये भी आप बता सकते हैं, हाँ, ये जवाब भी ऑन साइट बच्चों ने दे दिया, ऑनलाइन बच्चे भी दे दें, क्यों ये क्लास मॉनिटर बन गए, कल का बयान भी अगर किसी ने सुना अच्छी तरीके से ना, तो वो भी इसका जवाब दे सकता है, कल के बयान पे भी इसी तरह की बात हो रही है, सीनियर थे, सबसे ज्यादा सीनियर, सबसे ज्यादा उनका तजुर्बा था, सबसे ज्यादा उनका जो है वो एक्सपीरियंस था, एक्सपोजर था, राइट, जब वो छोटे बच्चे थे तो फारस से चले थे ना अपने घर में, राइट, अपने घर से चले थे, फिर रोम आए, फिर वहां पर जो है वो ईसाइयों के साथ रहे, एक पादरी के साथ रहे, फिर दूसरे बिशप के साथ रहे, फिर तीसरे बिशप के साथ रहे, फिर चौथे, फिर उसके बाद जो है वो गुलाम बना लिए गए, फिर वो सफर करते 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 बिलाखिर जो है वो मदीना तैयबा पहुंचे, कितनी एज हो चुकी थी उनकी, 250 years around, 200 plus years unki umar ho chuki thi, theek hai na. Kal ke bayan mein kya baat hui thi, kisi ko yaad hai? Is topic pe ek baat hui thi kal ke bayan mein, agar kisi ko yaad ho, bahut hi khushi hogi agar kisi ko wo baat yaad aa jaye. Inki umar kya thi? 200 plus years thi Salman Farsi رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, ٹھیک ہے نا جی. ان کی بھی فیملی نہیں تھی, ہاں ان کی فیملی نہیں تھی, بعد میں تو بن گئی, لیکن ابھی شروع میں نہیں تھی. بعد میں تو سبھی کی فیملیز بن گئی, شروع میں تو نہیں تھی نا. He had studied from previous priests, exactly, ٹھیک ہے نا, اتنی سینئر تھے جی. کل کے بیان میں بات یہ ہوئی تھی کہ جو اسلامک ٹریڈیشن, حتیٰ کہ ایون ٹریڈیشنلی جو نان مسلمز, یہ جیوز اینڈ کرسچنز کے جو اسکولز ہوتے تھے نا, اور اسلام کا جو اسکول ہوتے تھے, ان کے اندر کوئی ایج گروپنگ نہیں ہوتی تھی کہ جی 6 سال کی عمر کے بچے جو ہے نا وہ ہوں گے سیکنڈ گریڈ کے اندر, اور جو 7 سال کے بچے ہوں گے نا وہ ہوں گے 3rd grade کے اندر, اور جو 8 سال کے بچے ہوں گے وہ ہوں گے 4th grade کے اندر, ٹھیک ہے نا. اب یہ جو ہے وہ ایج گروپنگ ہو گئی. اب اس وجہ سے ہیں, جب کسی بچے کو حفظ کے لیے جو ہے وہ اسکول سے نکال لیتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں, جب کسی بچے کو قرآن مجید حفظ کرانے کے لیے اسکول سے نکالتے ہیں تو کیا کہتے ہیں پھر سارے لوگ جی بتائیں نا, کیا کہتے ہیں؟ 2 سال وہ حفظ کرتا ہے, 3 سال حفظ کرتا ہے, ہی از لیگنگ بیہائنڈ, پیچھے ہو گیا ہے نا, اس کا سال ضائع ہو گیا, رائٹ. نعوذ باللہ, سبحان اللہ اکبر, کیسی عجیب بات کہتے ہیں. 2 سال 3 سال اللہ کا کلام حفظ کر رہا تھا, رائٹ, اللہ کے قرآن کو پڑھ رہا تھا, ہر لفظ یعنی ہر لیٹر پڑھنے کے اوپر اس کو 10 نیکی مل رہی تھی, جنت میں اس کا کتنا اونچا مقام بن رہا تھا, اور ہم کیا کہتے ہیں کہ اس کا سال ضائع ہو گیا. اللہ تعالیٰ کو سوچیں کتنا غصہ آنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کو آنا چاہیے سے مطلب یہ نہیں کہ ہم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو سجیسٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو غصہ آنا چاہیے, لیکن ہم اس طرح سے سوچیں اللہ تعالیٰ کو کتنا غصہ آتا ہوگا اس بات کے اوپر, کتنا غصہ آتا ہوگا جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اس کا سال ضائع ہو گیا, یہ پیچھے ہو گیا, یہ پیچھے ہو جائے گا. بھائی کس کے پیچھے ہو جائے گا, یہ تو سب سے آگے ہو گیا, رائٹ. لیکن ایسی کانسیپٹ کیوں بنا ہوا ہے ہمارے یہاں؟ کیونکہ ہم نے گریڈنگ کر دی ہے ایج کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, ایج کے ساتھ, کہ کیونکہ یہ 6 سال کا ہے نا, ہی ہیز ٹو بی ان دا سیکنڈ گریڈ, رائٹ. یہ 7 سال کا ہے, او ہی ہیز ٹو بی ان دا 3rd grade, وٹ یو مین ہی ہیز ٹو بی ان دا 3rd grade اور شی ہیز ٹو بی ان دا 3rd grade, کہاں سے آئی ہے یہ سیکنڈ گریڈ 3rd grade اور ایج, رائٹ. 200 سال سے زیادہ جو ہے نا وہ بھی اسی گریڈ کے اندر ہیں, جس گریڈ کے اندر جو ہے وہ 30 years old ہے, رائٹ. باقی صحابہ جو تھے وہ 200 سال کے تھوڑی تھے, کوئی صحابہ جو تھے وہ 30 سال کے تھے, کوئی صحابہ جو تھے وہ 40 سال کے تھے, کوئی صحابی جو تھے وہ 20 سال کے تھے, ہے نا. کوئی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ جو تھے وہ اگرچہ کہ ہاں شروع میں تو وہ بھی اسی کے اندر ہی ہوں گے, علی رضی اللہ عنہ بعد میں ان کی شادی ہوئی ہے, ان کا بھی ذکر پڑھیں گے ابھی ہم, رائٹ. تو وہ جو تھے وہ 14 سال کے, رائٹ, کوئی 12 سال کا, کوئی 16 سال کا, کوئی, ٹھیک ہے نا جی. کسی نے لکھا, یو آر میکنگ ہم فال بیہائنڈ ہز پیئرز ویئر دیر از ایکچولی نو سیٹ ایج فار ایجوکیشن, ٹھیک ہے نا بھائی. پیئرز جو ہیں, کل بیان میں یہی بات آپ کو بتائی تھی ایک امریکن اسکالر کی لکھی ہوئی بات, ہے نا, کہ جس کلاس کے اندر وہ پڑھتے تھے تو اس کلاس کے اندر 60+ بھی ایک اسٹوڈنٹ تھے 60 سال سے زیادہ عمر کے, اور جو ہے وہ 5 سال کا بچہ جو ہے نا وہ اسی کلاس کے اندر قرآن حفظ کر رہا ہوتا تھا, اور وہ خود جو تھے وہ شاید 25-30 سال کے تھے اس وقت, ٹھیک ہے. تو اصحاب صفہ, وچ واز دا فرسٹ مدرسہ آف اسلام, اس کے اندر مانیٹر کون تھے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی, ٹھیک ہے نا, اور اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے, تو یہ ایک اور بہت امپورٹنٹ وہاں کے اسٹوڈنٹ تھے, بہت امپورٹنٹ ترین اسٹوڈنٹ تھے, ٹھیک ہے. تو انہی کا پھر نا واقعہ اس کلاس کے اندر ہم آپ کو سناتے ہیں, آپ نے پہلے بھی سنا ہوا ہوگا لیکن پھر ریپیٹیشن ہو جائے گی اس کی, ٹھیک ہے. تو یہ بتاتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ, ان کو ابو ہریرہ کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ ان کے پاس ایک ہوتی تھی हुर नहीं, हर हो, हर कहते हैं बिल्ली को ना, हुरैरा, ठीक है। इनके पास होती थी एक बिल्ली, बिल हाँ, बिल नहीं, बिल्ली, ठीक है। तो बिल्ली की वजह से ना ये अबू हुरैरा मशहूर हो गए थे। नबी अलैहिस्सलाम ने एक दफा उनको फरमाया, या अबा हर, ठीक है, ए अबू, ठीक है, ए बिल्ली वाले, बिल्ली के अबू, बिल्ली के अबू को थोड़ी थी, ठीक है, लेकिन अरबी जुबान के अंदर इस तरीके से कहा जाता है, ठीक है। इस तरह से कुन्नियत बन जाती है, जिस चीज के साथ किसी को ना बहुत ज्यादा मुनासबत हो जाए, बहुत ज्यादा एफिलिएशन हो जाए ना, तो उसी से उसको अबू या कह दिया जाता है। बहरहाल, तो ये अपने स्टूडेंट्स को बताया करते थे कि कभी कभी ना हमारे पास कुछ खाने को नहीं होता था, असहाब सुफा वालों, ठीक है, और हमें इतनी सख्त भूख लगी होती थी कि हम लोग ना अपने पेट के ऊपर पत्थर बांधते थे, क्योंकि इतना स्ट्रेच होता है पेट, जब बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है तो पेट के जो मसल्स होते हैं ना वो बे इंतहा स्ट्रेच होते हैं, आपसे जो है वो खड़ा नहीं रहा जा रहा होता, यानी दर्द होता है। तो अब इसका एक ट्रेडिशनल एक तरीका ये था कि कोई चीज लेते थे, जैसे कोई कोई चादर या कोई कपड़ा, और उसको ना अपनी पीठ के अपने पूरे वेस्ट के ऊपर बांध देते थे, जैसे बेल्ट बांधते हैं ना, बेल्ट, ठीक है, और उस बेल्ट के अंदर जो है ना वो एक मोटा, एक भारी सा पत्थर डाल देते थे, ठीक है ना। इस पत्थर के डालने से जो है ना वो जो दर्द होता था ना वो किसी तरीके से कम हो जाता, मसल्स जो है ना उनका स्ट्रेच जो है वो कम हो जाता था। तो पेट पे पत्थर बांधना ये कई जगह पर आएगा सीरत के अंदर, तो ये लोग भी ना पेट पे पत्थर बांध दिया करते थे इस दर्द से बचने के लिए, ठीक है। अबू हुरैरा तआला फरमाते हैं कि कभी कभी ना मैं पेट के बल जमीन पे लेट जाता था, ठीक है, अपना सीना और अपना अपना पेट जो है ना वो जमीन पर लगा देता था। क्यों लगाता था? कि शायद जमीन के अंदर अगर कुछ नमी वगैरह है ना तो उसकी वजह से जो है वो मुझे जो है वो थोड़ी सी कोल्ड, यानी कुछ कुछ ठंडक मिल जाए जमीन से, वरना कुछ पीने के लिए भी मुश्किल से होता था और खाने के लिए तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो एक दिन ना मुझे इसी तरीके से बहुत ज्यादा भूख लगी, बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी, ठीक है। मेरी आवाज नहीं आ रही, बाकी लोगों को आ रही? म्यूट तो नहीं? हाँ इधर तो आ रही है, लेकिन यहाँ पर दूसरे वाले आनी तो चाहिए। अच्छा हाँ, बाकी लोगों को तो आ रही है आपके, शायद इनको अगर कोई मैसेज लिखते हैं कि चेक योर माइक, चेक योर स्पीकर, ठीक, जज़ाकअल्लाह। अच्छा, तो ये कहने लगे कि एक दफा ना मुझे इतनी ज्यादा भूख लगी हुई थी कि मुझे जैसे ना चक्कर आने शुरू हो गए ना भूख की वजह से, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। तो मैं ना रास्ते में जा करके जरा बाहर की तरफ रास्ते में जाके बैठ गया कि कोई आएगा तो मुझे देख करके वो पहचान जाएगा कि इसको सख्त भूख लगी हुई है तो वो मुझे शायद खाना खिला दे। तो मैं जाकर के रास्ते में बैठ गया, इतने में ना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह जो है वो वहां से गुजरे, ठीक है। तो मैंने ना उनको रोका और उनसे एक कुरान की आयत का मानी पूछा, मानी दरियाफ्त किया कि इस आयत का क्या मतलब होता है, ठीक है। अच्छा, फुल टाइम स्टूडेंट तो ये अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, लेकिन आयत का मानी पूछ रहे हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, क्यों? कोई बताएगा कि आयत का मानी पूछ रहे हैं अबू बकर सिद्दीक से, हालांकि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह जो है वो तो पार्ट टाइम स्टूडेंट है और फुल टाइम स्टूडेंट तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने, ठीक है ना, क्यों उनसे पूछ रहे हैं? वो तो और बात है, बिकॉज द आयत हैज अ मीनिंग ऑफ गिविंग सदका। अच्छा, हो सकता है ये, लेकिन इस आयत का तस्करा नहीं, कौन सी आयत, ये तो कहीं नहीं लिखा, उसमें शायद खाना खिलाने का जिक्र है। माशाल्लाह, सारे बच्चों ने बड़ा जबरदस्त इंटेलिजेंट जवाब दिया कि आयत के अंदर खाना खिलाने का जिक्र होगा, इस वजह से उन्होंने उस आयत का मतलब पूछा। हम कुछ और सोच रहे थे, आप लोगों ने कुछ और सोच लिया, जबरदस्त। टू फॉलो हिम टू हिज हाउस, नहीं, इस वजह से क्योंकि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अगरचे के मदरसे के अंदर एनरोल्ड स्टूडेंट तो नहीं थे, लेकिन उनको नबी अलैहिस्सलाम की सबसे ज्यादा सोहबत हासिल, सबसे क्लोज कंपेनियन जो थे ना नबी अलैहिस्सलाम के, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु थे। फॉर्मल एजुकेशन उनकी नहीं थी, कोई बुक्स बुक पढ़ने वाली एजुकेशन, कोई स्कूल में एडमिशन लेके जो एजुकेशन हासिल करते हैं वो तो उनके पास नहीं थी, लेकिन सोहबती इल्म सबसे ज्यादा उनके पास था। और असल इल्म जो होता है ना वो सोहबती इल्म होता है, स्कूल कॉलेजेस के अंदर आप चीजों को याद तो कर सकते हैं, लेकिन उन चीजों के जो मानी होते हैं, जो मीनिंग्स होती है ना, डेप्थ के अंदर जाके जो मीनिंग्स होती हैं, वो टीचर के साथ सोहबत से हासिल होती है। और वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रहता है, इनके पास था, इनके पास नहीं था। ये तो बहुत बाद में आके मुसलमान हुए थे, यानी जब इनकी उम्र जो है ना एक्चुअली 60 ईयर्स हो चुकी थी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की, उस वक्त ये आकर के मुसलमान हुए। तो इन्होंने तो बहुत सारा वक्त नहीं देखा था नबी अलैहिस्सलाम के साथ ना, ठीक है। मक्का मुकरमा की पूरी जिंदगी इन्होंने नहीं देखी, मदीना मुनव्वरा के अंदर भी बाद में आके मुसलमान हुए, बल्कि शायद पता है मक्का के जमाने में गालबन या उससे कुछ अर्सा पहले ये मुसलमान हुए, ठीक है। बहरहाल तो इन्होंने हजरत अबू बकर सिद्दीक से सवाल किया, लेकिन इनके दिल में नीयत जो थी ना, वो असल में इस वक्त ये थी कि इनको जब वो देखेंगे ना अबू बकर सिद्दीक तो वो पहचान जाएंगे कि इनको शदीद भूख लगी है, तो शायद वो ऑफर कर देंगे भाई मेरे साथ आ जाओ घर पे खाना खा लेना। लेकिन अबू बकर सिद्दीक ने ना बस आयत का मतलब बताया और चले गए, ठीक है ना। अब ये बड़े मायूस हुए कि यार ये तो मेरा प्लान ही जो है वो नाकाम हो गया। बहरहाल ये बैठे रह गए, कोई और तो आएगा ना। फिर उसके बाद आए हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो ही वॉज नेक्स्ट टू जस्ट अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु इन हिज नॉलेज, राइट। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो सबसे ज्यादा करीब थे नबी अलैहिस्सलाम सलाम के, और दूसरे नंबर पर उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु है ना, खलीफा दोम, सही है। अच्छा, अजीब एक बात उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में अल्लाह ने आपकी बरकत से दिल में डाली, ठीक है ना। आपने शायद सुना हो या बड़े जो लोग सुन रहे हैं उन्होंने सुना होगा कि जब उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत हुई, कब शहादत हुई थी उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की, बिल्कुल अभी रिसेंटली, राइट। अभी वो टाइम गुजरा है, बहुत सारे लोगों को पता चला होगा। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत जो है वो जिलहज्जा के आखिरी तारीख को हुई या पहली मुहर्रम को हुई, शहीद हुए। तो उनकी शहादत के वक्त ना उनके बेटे हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि आज दुनिया से 99% नॉलेज खत्म हो गई, आज दुनिया से 99 हिस्सा इल्म रुखसत हो गया, सिर्फ एक हिस्सा इल्म बाकी रह गया, 1% इल्म दुनिया में रह गया। ये अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, जब उनके वालिद उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल हुआ, ठीक है ना। अब जब भी उन्होंने ये बात कही ना, तो बड़े बड़े दूसरे लोग भी मौजूद थे वहां पर, तो उन्होंने जरा नाराजगी का इजहार किया कि क्या मतलब तुम्हारे बाप को ही सब कुछ आता था, राइट। अब वो तो सारे साथ के लोग थे ना, जैसे माशाल्लाह बड़े बड़े सहाबी थे, हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, ये सब भी तो बहुत बड़े बड़े सहाबी थे। तो जब उन्होंने ऐसी बात सुनी ना, तो उनको अच्छा नहीं लगा कि भाई इनका बेटा अपने अब्बा की इतनी तारीफ कर रहा है कि 99% इल्म रुखसत हो गया और सिर्फ 1% इल्म रह गया दुनिया के अंदर, ठीक है। तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं जो हूं ना, वो ये आम मसलों वाले औरतों के जो ऐसे मसले होते हैं कि भाई कब नमाज पढ़नी है कब नमाज नहीं पढ़नी, मैं इस वाले इल्म की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं तो अल्लाह की मारफत के इल्म की बात कर रहा हूं, यानी जो अल्लाह, यानी जो चीजों की जो मीनिंग्स होती है ना, जो मफहूम होता है, मीनिंग्स होती है, मारफत होती है, मैं उस इल्म की बात कर रहा हूँ। मैं इस तरह के जो है ना, वो कैसे नमाज पढ़नी है कैसे नमाज नहीं पढ़नी, मैं उस वाले इल्म की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास बहुत ज्यादा इल्म। अच्छा, एक और भी तरीका है इस बात को सुनने का, बड़े लोगों से बात है, बच्चों की शायद समझ ना आए तो आप एक्सक्यूज करें इस बात पे, ठीक है। कि एक और भी तरीका है इसको देखने का, वो क्या कि भाई जब उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु दुनिया से रुखसत हुए, ठीक है, तो उनसे पहले कौन रुखसत हो चुका था दुनिया से? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु दुनिया से रुखसत हो चुके थे, और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से पहले कौन दुनिया से रुखसत हो चुका था? हजरत मोहम्मद मुस्तफा नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत हो चुके थे, ठीक है ना। तो जब उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु दुनिया से गए ना, तो उस वक्त तक अल्लाह के आखिरी नबी भी दुनिया से जा चुके थे, और अल्लाह के आखिरी नबी के जो खलीफा थे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, वो भी दुनिया से जा चुके थे, और फिर जो दूसरे खलीफा थे उमर फारूक, वो भी दुनिया से चले गए। अगर इन तीनों हजरात को कंबाइन कर लिया जाए, तो ये बात समझना बहुत आसान है कि दुनिया में जो अल्लाह ताला ने इल्म भेजा था, उस इल्म का 99% जो है वो दुनिया से चला गया, और फिर 1% रह गया। लेकिन 1% भी इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि हम तो 1% का भी जो है वो 0.001% हासिल नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो इन तीनों हजरात को मिला लिया जाए तो वाकई ये बात सब तो मुश्किल काम नहीं है कि 99% इल्म जो है वो दुनिया से चला गया, ठीक है। बहरहाल तो उमर फारूक का था, उनके पास भी सोहबत बहुत ज्यादा थी नबी अलैहिस्सलाम की, तो इन्होंने उनसे भी सवाल किया किसी एक आयत का ना, तो उमर रज़ी अल्लाह तआला ने उन्होंने भी जो है वो बताया और उसके बाद वो भी चले गए, खाने का कोई इनसे बात नहीं करी, ठीक है। तो अब इनको फिर बहुत मायूसी हुई कि यार मुझे इतनी सख्त भूख लगी और कोई मेरी बात ही नहीं समझ रहा। फिर फरमाते हैं कि कुछ देर बाद अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, अबुल कासिम नबी अलैहिस्सलाम की कुनियत जो थी ना वो अबुल कासिम थी, ठीक है ना। इसमें एक वजह तो ये थी कि नबी अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम कासिम था जिनका इंतकाल हो गया था फिर, ठीक है। और दूसरी ये कि कासिम का मतलब होता है तकसीम करने वाला, डिस्ट्रीब्यूट करने वाला, तो नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से सारा इल्म जो है ना वो नबी अलैहिस्सलाम को मिलता था और नबी अलैहिस्सलाम उस इल्म को आगे उम्मत में डिस्ट्रीब्यूट फरमाया करते थे। तो क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम का खास काम जो था ना वो तकसीम करना था अल्लाह की नेमतों को दुनिया के अंदर, इस वजह से भी नबी अलैहिस्सलाम की कुनियत अबुल कासिम, ठीक है। तो हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया कि फिर हजरत अबू के अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर तशरीफ लाए, ठीक है ना। उन्होंने जैसे ही मुझे देखा ना वो देखते ही पहचान गए कि इसको भूख लगी है, तो नबी अलैहिस्सलाम जो है ना इनको देख करके मुस्कुराए और फरमाया या अबू हर, ए बिल्ली के अब्बा, मुन्ने के अब्बा नहीं बिल्ली के अब्बा, ठीक है, ए बिल्ली के अब्बा क्या हुआ है। तो नबी तो अबू हुरैरा ने जवाब दिया कि या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, मैं हाजिर हूँ जी, मुझे हुक्म कीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चलो मेरे साथ चलो, ठीक है ना। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो लिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर पहुंचे, किसी उस जमाने में या तो सौदा हजरत आन के घर पहुंचे होंगे या आयशा सिद्दीक हजरत आन के घर पहुंचे होंगे, क्योंकि उस वक्त यही दो बीवियां थी ना, ठीक है। तो अपने घर पहुंचे तो देखा कि वहां पर एक प्याले में दूध रखा हुआ है, ठीक है। तो घर वालों से पूछा, यानी अपनी बीवी से पूछा कि ये दूध कहाँ से आया, तो घर वालों ने जवाब दिया कि किसी ने ना आपको हदिया भेजा है, दूध का प्याला, ठीक है ना। दूध का प्याला भी हदिये में भेजा जा सकता है, ठीक है ना। हदिये में भेजने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि तो बहुत महंगी चीज, कोई बड़ा जबरदस्त किस्म का जो है वो आर्ट्स एंड क्राफ्ट वाली चीज, कोई तो दीवार पे लटकाने वाली, दरवाजे पे लटकाने वाली चीज, कोई महंगी सी चीज, दूध का प्याला हदिया। जैसे माशाल्लाह जो आस पड़ोस में लोग रहते हैं तो वो कभी जो है वो घर के अंदर कोई सालन पकती है तो वो सालन हदिये में भेज देते हैं, है ना। कभी कोई जो है वो केक बनाया किसी ने तो वो अपने पड़ोसियों को हदिये में भेज देते हैं, तो उसी तरीके से सहाबा जो है वो दूध का प्याला हदिये में भेज देते हैं, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने ये सुन करके ना अबू हुरैरा तआला से कहा, अबू हुरैरा जाके असहाबे सुफा को बुला लाओ, ठीक है। तो अबू हुरैरा तआला फरमाते हैं कि जो असहाबे सुफा लोग थे ना तो वो इस्लाम के मेहमान थे, यानी नबी अलैहिस्सलाम के मेहमान थे, इस्लाम के मेहमान थे, देवर द गेस्ट ऑफ अल्लाह, जो भी आप कहना चाहें उनको, यू कैन कॉल देम गेस्ट ऑफ अल्लाह, यू कैन कॉल देम गेस्ट ऑफ द प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यू कैन कॉल देम गेस्ट ऑफ इस्लाम, ठीक है। तो ये सारे के सारे गेस्ट होते थे, ना इनका कोई घर होता था, ना इनके पास कोई माल होता था, क्योंकि ये लोग ट्रेड वगैरह फार्मिंग वगैरह तो करते नहीं थे, ये तो एजुकेशन हासिल करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए थे ना, ठीक है। घर वर तो इनका था नहीं, तो नबी अलैहिस्सलाम क्या करते थे कि जब कहीं से कोई सदका आता था ना तो वो सदका जो है वो खुद बिल्कुल भी नहीं खाते थे, ठीक है ना। क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम निशानियों में से एक निशानी याद है, जब हजरत सलमान फारसी तशरीफ लाए थे तो तीन निशानियां थी ना, तो वो तीन निशानियों में से एक निशानियां क्या थी कि जब इनको कोई सदका देगा तो ये सदका नहीं कबूल करेंगे, ठीक है ना। तो नबी अलैहिस्सलाम सदका जो है ना वो पूरा का पूरा असहाबे सुफा को भेज देते, ठीक है, खुद उसमें से कुछ नहीं लेते थे, इसलिए कि सदका आपके ऊपर हराम था। लेकिन अगर कोई हदिया आता था, यानी कोई गिफ्ट आता था, तोहफा, तो हदिया जो है ना उसमें से खुद भी कुछ खा लेते थे और बाकी जो है ना असहाबे सुफा को भी इसमें शामिल कर लिया करते थे, ठीक है। अब चूंकि ये जो दूध का प्याला था ये हदिया में आया था तो असहाबे सुफा को फिर बुलवा लिया, ठीक है। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? भूख लगी हुई थी ना सबको भाई, नबी अलैहिस्सलाम को तो अपने स्टूडेंट्स हमेशा याद रहते थे ना, तो तो सब पता था कि अबू हुरैरा को इतनी भूख लगी हुई है, तो इसका मतलब यह है कि बाकी असहाब सफा को भी भूख लगी हुई होगी ना, उनके पास भी कुछ खाने को नहीं होगा। तो अबू हुरैरा ने से कहा कि जाके असहाब सफा को बुला के लाओ। ठीक है, अच्छा, अब किताबों में लिखा हुआ है कि जो असहाब सफा होते थे ना, ये कभी कभी तो इनकी तादाद होती थी 70, 70, ठीक है ना, और कभी कभी ये बढ़ते रहते थे, यानी लोग आते रहते थे वहां पे, ठहरते रहते थे, कभी कभी ये बढ़ते बढ़ते 400 हो जाया करते थे, 400 तक, 70 से नीचे इनका नंबर नहीं रखता, 70 से ऊपर ही रहता था। ठीक है, और कभी कभी 400 तक भी पहुंच जाते थे, कभी 200 होते होंगे, कभी 300, कभी 100, कभी 150। ठीक है, तो अब यहाँ पे तादाद तो नहीं पता कि इस वक्त कितने थे, लेकिन एटलीस्ट 70 तो होंगे ना। ठीक है, ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह, आपने तीनों निशानियां हैं। चले, तो अब अबू हुरैरा जो है ना, वो फरमाते हैं, जब उन्होंने ये हदीस बयान करी होगी ना अपने स्टूडेंट्स को, तो उन्होंने फरमाया कि भाई जब आप सरसम ने मुझे ये कहा ना कि जाके असहाब सुफा को बुला लाओ, तो मुझे थोड़ा सा जो है ना वो जरा मुश्किल हुई, दिल के अंदर मुश्किल हुई। ये तो नहीं कि इन्होंने मना कर दिया नबी रसूल, बिल्कुल भी मना नहीं किया, सहाबा तो आप सरसम की हर बात के ऊपर जान देने के लिए तैयार रहते थे, है ना। तो इस पे मना करने का तो सवाल ही नहीं था, लेकिन दिल में एक एक ख्याल तो पैदा होता है ना, ठीक है ना, जो कि एक नेचुरल सी बात होती है। कहते हैं मेरे नफ्स को ना कुछ शाख गुजरा, और मैंने अपने दिल में कहा कि ये एक प्याला दूध ये सारे असहाब सुफा के लिए कैसे काफी होगा, है ना, 70+ असहाब सुफा, और मुझे इतनी ज्यादा दूध, मुझे इतनी ज्यादा जो है वो भूख लगी थी, तो भाई मैं इसका सबसे ज्यादा हकदार था ना कि मैं इसको पीता और मुझे कुछ एनर्जी मिल जाती। ठीक है, अब जो है ना होगा क्या कि जब ये असहाब सुफा को मैं बुला के लाऊंगा ना, तो दस्तूर ये है कि जो बुला के लाते हैं ना, तो नबी अलैहिस्सलाम हमेशा उसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी, ठीक है ना, कि तुम ही सबको पिलाओ भी, तो अब मुझे जो है ना सबको पिलाना भी पड़ेगा, मेरे लिए क्या बचेगा इसके अंदर, है ना। अगर एक एक घोंट भी सबने पिया, तो एक प्याले के अंदर से तो है ना 10 लोग भी शायद पूरा ना पी सके, ठीक है ना। लेकिन अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मुझे माननी थी, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानना अल्लाह की बात मानना है, ठीक है ना। तो मेरे पास कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं था, चुनाचे मैं गया मस्जिद नबी में और सारे असहाबे सुफा को बुला के ले आया। ठीक है ना, अब आप ने वही किया कि मुझे हुक्म दिया कि अब अबू हुरैरा सबको पिलाओ। ठीक है, तो मैंने ना फिर एक एक को पिलाना शुरू किया, यानी एक एक के पास प्याला लेके गया, राइट साइड से शुरू करना सुन्नत है ना, ठीक है ना, तो सबको बिठा दिया होगा और फिर राइट साइड से शुरू कर लिया होगा कि भाई आप पिए। तो एक सहाबी ने पी लिया और अच्छे से पिया, ये नहीं कि थोड़ा सा पिया कि भूख रह गई, नहीं, पेट भर के पिया। फिर उसके बाद जो है वो दूसरे को दिया प्याला, अच्छा प्याले के अंदर कमी नहीं हो रहा, दूध दूध वैसा का वैसा ही, और एक साहब का पेट भर गया, फिर दूसरे को दिया, उन्होंने खूब शराब होकर के पिया, उनका भी पेट भर गया, फिर तीसरे को दिया, फिर चौथे को दिया, फिर पांचवें को दिया, सारे सहाबा ने पी लिया, असहाबे सुफा सब ने पी लिया, सबका पेट भर गया। अब जो है ना वो जैसे जैसे पीते गए वैसे वैसे जाते गए, ठीक है, यानी जस्ट गोया के लाइन लगा के खड़े हुए होंगे या बैठे हुए होंगे लाइन लगा, एक पीता था चला जाता था, जैसे हमारे मशाइख जो है ना इज्तिमा के बाद जो है ना वो हजरत जो है वो बैठ जाते हैं और फिर इधर से लोग आना शुरू होते हैं, मुसाफिर करते हैं, बाहर निकल जाते हैं, हाथ मिलाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, हाथ मिलाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, ऐसे ही लगता है ना, कि एक सहाबी उन्होंने पिया बाहर निकल गए, दूसरे साहब, जब सब चले गए ना, तो अब नबी अलैहिस्सलाम ने मुझसे कहा अबू हुरैरा बैठ जाओ और पीना शुरू करो। ठीक है ना, मैंने पीना शुरू किया और आप ससुरम मुझे फरमाते रहे और पियो दूध खत्म ही नहीं हो रहा, आप ससुरम फरमाए और पियो, मैंने और पिया और पियो, मैंने और पिया, हत्ता के मेरा पेट भर गया, और फिर होता है ना पेट फटने को आ रहा होता है। ठीक है, तो मैं नबी अलैहिस्सलाम से बोल उठा कि अल्लाह की कसम, कसम उस जात की जिसने आपको हक देकर भेजा है या नबीम, अब बिल्कुल जगह नहीं है, अब मैं और नहीं पी सकता, जैसे हम कहते हैं ना कभी, अब मेरा पेट फट जाएगा। ठीक है, जब मैंने ये कहा ना, तो नबी अलैहिस्सलाम ने मेरे हाथ से प्याला ले लिया और अल्लाह ताला की पहले हम्द बयान करी, है अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र, ऐसे अल्फाज से अल्लाह ताला की हम्द बयान करी, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ा और फिर उसके बाद उस प्याले के दूध को पी लिया और अब वो दूध खत्म हो गया। ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम के पीने के ऊपर फिर वो दूध खत्म, एक प्याला दूध, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, इसको जो है वो एक तो बरकत कहते हैं, ठीक है ना, और दूसरी क्या चीज कि ये नबी अलैहिस्सलाम का मुअज्जज़ा भी था, ठीक है ना। एक प्याले दूध से इस तरीके से सबने जो है वो पी लिया और पेट भी भर गया सबका। ये नहीं कि बहुत ही जो है वो एक एक ड्रॉप पिया, तो उससे कोई थोड़ी पेट भरता, ठीक है, सबने पी लिया। तो ये हालात थे, ठीक है ना। ऐसे कभी एक दूध का प्याला आ जाता था तो फिर सारे साहब जो है उस एक में से पिया करते थे। अच्छा, यहाँ पे क्या पूछा, उस दूध के प्याले में बरकत, ठीक है, इतनी बरकत। उसी तरह से और भी बहुत सारे वाकयात हैं, हजरत गज़वाए खंदक का भी वाक्य आपने शायद सुना होगा कि एक छोटी सी बकरी जो है ना वो हजरत जाफर रज़ी अल्लाह ताला ने ज़बह करी थी और सिर्फ नबी अलैहि सलाम को दावत दी थी, नबी अलैहि सलाम पूरे लश्कर को लेकर के आ गए, राइट। अब वो मियाँ बीवी परेशान कि हमने तो सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम और दो सहाबा को बस दावत दी थी क्योंकि छोटी सी बकरी का बच्चा ज़बह किया था, राइट। आप सल्लल्लाहु तो पूरे लश्कर को लेकर के आ गए। बीवी ने कहा कि आपने दावत दी है पूरे लश्कर को कि नबी अलैहिस्सलाम ने दावत दी है? उन्होंने फरमाया कि मैंने कोई थोड़ी दावत दी, मैंने तो खाली नबी अलैहिस्सलाम को दावत दी थी। तो नबी अलैहिस्सलाम ने सबको दावत दे दी। तो बीवी ने फरमाया कि अगर अल्लाह के नबी ने दावत दी है ना, देन डोंट वरी, राइट, अल्लाह विल टेक केयर ऑफ इट। और उसमें भी यही हुआ, एक छोटी सी हंडिया के अंदर जो है वो सूप बनाया था, नबी अलैहिस्सलाम सलाम जो है ना उसमें से निकालते रहे, पूरे लश्कर ने पी लिया। और फिर उसके बाद जब नबी अलैहिस्सलाम सलाम ने उसको पिया ना, फिर उसके बाद वो खत्म, पूरा लश्कर जो है ना, पता नहीं कितने हजार सा 1,000 से ज्यादा सहाबा थे, ठीक है। अच्छा, और असहाबे सुफा के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग और भी डिटेल्स हैं कि नबी अलैहिस्सलाम सलाम ने ना मदीना मुनव्वरा में जिन लोगों के डेट फार्म्स होते थे, ठीक है, खजूरों के बागात होते थे, तो उनको ये हुक्म दिया हुआ था कि तुम लोग जो है ना वो अपने खजूर जो तुम्हारे दरख्तों पे लगते हैं ना, तो उनमें से तुम जो है वो कभी कभी यानी खजूरों का एक बंच ला करके जो है ना वो मस्जिद नबी के अंदर रख दिया करो। उसके लिए नबी अलैहिस्सलाम सलाम ने सहाबा से कह के एक रस्सी बंधवा दी, ठीक है, यानी जैसे दीवारें थी ना तो दीवारों के दरमियान एक रस्सी सी बनवा दी थी। तो सहाबा जो है ना वो खजूरों के अपने खोशे कहते हैं ना, खोशे जो सऊदी अरब में रहते हैं आजकल जो है वो देख रहे होंगे कि खजूरों के दरख्तों के अंदर बड़े बड़े जो है वो खोशे लटक रहे हो, बंचेस, ठीक है। तो वो बंचेस जो है ना वो लेकर के आते थे और वो उस रस्सी के ऊपर टांग देते थे। वो रस्सी थोड़ी सी ऊंची थी, ठीक है, तो बंचेस टंगे हुए होते थे। तो अब इतनी ऊंची थी कि इनका हाथ वहां नहीं जाता था, तो ये लकड़ी से जो है ना कोई लकड़ी उठाते थे और उस खोशे के ऊपर लकड़ी मारते थे ना, तो कुछ खजूरें जो है वो गिर जाती थी। तो वो इस तरह से गिरी हुई खजूरें जो है वो असहाबे सुफा उठा उठा करके खा लिया, ठीक है। एक दफा एक आदमी जो है ना, कोई आदमी, उसका नाम नहीं है कि कौन था, वो एक खोशा ला करके टांग गया। जब नबी अलैहिस्सलाम सलाम ने उस खोशे को देखा ना, तो उसके अंदर जो थी ना वो अच्छी खजूरें नहीं थी, शायद थोड़ी थोड़ी गली सड़ी इस किस्म की खजूरें होंगी, ज्यादा पक जाए ना तो फिर वो खाने के काबिल नहीं रहती, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम सलाम ने उसको देखा कि इसके अंदर जो है ना जरा खराब खजूरें हैं, तो आप सबसे फरमाया कि ये जो शख्स सबका लेकर के आया था ना, अगर ये चाहता तो इससे ज्यादा अच्छा खोशा ला के टांग सकता था, ठीक है ना, क्योंकि भाई ये जो आप टांग रहे हैं ये तो अल्लाह के रास्ते में हदिया कर रहे हैं ना, या सदका दे रहे हैं ना, तो अल्लाह को आप बेसिकली एक गोया के कर्जा दे रहे हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, मैं युक्रिदुल्लाह कर्ज़न हसना, जिसने अल्लाह को कर्जा दिया। अल्लाह को कर्जा देने का क्या मतलब है? कर्जा वो होता है कि जब आप किसी को कोई चीज लोन करते हैं और फिर वो उसको वापस करता है। तो जब हम सदका खैरात करते हैं ना अल्लाह की रजा के लिए, तो ये अल्लाह को दिया हुआ एक कर्जा होता है। मैं युक्रिदुल्लाह कर्ज़न हसना, अल्लाह ताला इस कर्ज को लौटाते हैं हमें, हमें वापस करते हैं, ठीक है। कैसे वापस करते हैं? जन्नत की नेमतों के शक्ल में वापस करेंगे। और दुनिया के अंदर भी अल्लाह ताला अपनी खुशी और अपनी मदद के जरिए से हमारे इन कर्जों को वापस किया करते हैं, ठीक है ना। तो जब अल्लाह को कर्जा दे रहे हैं तो भाई अच्छी चीज दें, सबसे बुरी चीज उठा करके क्यों हम दे रहे हैं? तो नबी अलैहिस्सलाम इस बात पर नाराज हुए कि किसी शख्स ने आकर के खराब खजूरों का खोशा जो है ना वो वहां पे टांग दिया था, ठीक है। अच्छा, और क्या बताएं आपको असहाबे सुफा के बारे में? कभी कभी ये लोग ऐसे भूख की वजह से इतना ज्यादा तंग हुए हुए होते थे कि इनको चक्कर आना शुरू हो जाता था और गिर जाते थे, ठीक है, नमाज में कभी कभी बेहोश हो जाते, इनके पास पहनने के लिए कभी कभी ना पूरे पूरे कपड़े भी नहीं होते थे, तो ये लोग जो है ना एक तरह की चादर कोई अगर किसी के पास है तो उसी एक चादर को जो है ना वो अपने गले में बांध लिया करते थे, ठीक है ना। अब वो एक तरह का जिस तरह का जुब्बा देखा होगा ना आपने, सऊदी लोग भी जैसे जुब्बा पहनते हैं और हम लोगों को भी आपने देखा होगा हजरत जी का वाला जो जुब्बा होता है वो बेसिकली एक ही कपड़ा नीचे तक आया हुआ होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से वो बांध देते थे और वो बेसिकली वन पीस क्लॉथ जो है ना वो नीचे तक आ जाता था, टांगों तक आ जाता था। और उसके अलावा दूसरा कपड़ा अगर इनके पास होता था तो वो एक धोती की शक्ल में या लुंगी की शक्ल में, राइट, तहबंद की शक्ल में वो बांध दिया करते थे, ट्राउजर बन जाते थे वो, ठीक। तो ये इनके हालात होते थे कि इतनी कुर्बानियां क्यों दे रहे होते थे, ठीक है ना। इनके पास पॉसिबल था भाई कहीं और चले जाते, किसी की नौकरी कर लेते, है ना, कहीं पे जो है वो बिजनेस कर लेते, बिजनेस के अंदर बड़ी बरकतें होती हैं, बड़ा पैसा मिल जाता है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये लोग इतनी कुर्बानियां क्यों दे रहे होते, जी इनको नेक मुसलमान बनना होता था, नेक मुसलमान तो दूसरे तरीके से भी बन सकते, नमाजें पढ़ना शुरू हो जाए, रोजे रखना शुरू हो जाए, अच्छी से जिंदगी गुजारना शुरू हो जाए, तो नेक मुसलमान तो वैसे भी बन सकते हैं। मस्जिद में आकर के इतनी कुर्बानियां देना क्यों, इतनी मुश्किल में जिंदगी गुजारना, ऐसा नहीं था कि इनके इनके पास कुछ करने को नहीं था, इनको कुछ आता जाता नहीं था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, ये मत समझिएगा। बिकॉज दे हैड नथिंग एल्स टू डू, बिकॉज दे डिड नॉट नो एनीथिंग एल्स, इस वजह से आकर के यहाँ पड़े रहते थे, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बड़े बड़े जहीन लोग थे, बड़े बड़े हुनरमंद लोग थे, सब कुछ कर सकते थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे आकर के रहते थे, जस्ट बिकॉज उनके पास जिम्मेदारियां नहीं थी, फैमिली की जिम्मेदारियां, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके ऊपर नहीं थी ना, इस वजह से यहाँ पे आके रहते थे। हालांकि चाहते तो बड़ी मजे की जिंदगी गुजार सकते थे जाकर, ठीक है। इसलिए अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की रजा तो बिजनेस करके भी हासिल कर सकते थे ना, यहाँ पे आके क्यों रहते थे, इनकी नजर आखिरत पे थी, दुनिया की जिंदगी अहम नहीं थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने के लिए। हाँ, एक तो बड़ी रीजन ये कि इसके जरिए से उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत मिलती थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को रोजाना कई कई बार देखना नसीब होता था, वाकई एक बहुत बड़ी रीजन थी, ठीक है ना। लेकिन दूसरी रीजन क्या, इल्म के लिए, माशाल्लाह दाऊद भाई ने बिल्कुल सही जवाब दिया, इल्म के लिए, आप यही कह रहे थे राइट, दीन इस्लाम का पहला हुक्म जब वही नाजिल हुई, कुरान मजीद नाजिल होना शुरू हुआ, सबसे पहला हुक्म, बल्कि सबसे पहला वर्ड क्या, सबको पता है ना, पढ़ो, अरबी में क्या कहते हैं, इकरा, राइट। अच्छा, पहला वर्ड जो है वो क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन भी तो हो सकता था, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम भी तो हो सकता था कुरान की आयत के तौर पर, वैसे तो बिस्मिल्लाह शुरू करने के लिए होता ही है, लेकिन सुभानल्लज़ी अंज़ला बि, ये सब भी हो सकता था, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने पहला, सॉरी, अल्लाह ताला ने वही का पहला वर्ड क्या रखा, ठीक है ना, इकरा, इकरा तो आपने बता दिया, लेकिन ये इकरा है क्या, इकरा का जो वर्ड है इसका मतलब है पढ़ना, राइट। लेकिन थोड़ा सा अगर ग्रामर आप जानते हो, अरबी ग्रामर, ठीक है ना, या इवन इंग्लिश ग्रामर जानते हो, तो ये टेंस क्या है, टेंस, ये सीगा क्या है, ठीक है, टेंस क्या है ये, जी, अमर, हुकुम, कमांड, समझते हैं ना, सब अंग्रेजी में भी बता दिया, उर्दू में भी बता दिया, अरबी में भी बता दिया, ठीक है ना, कमांड, अमर, हुकुम, ठीक है। सबसे पहला लफ्ज अल्लाह ताला ने कोई न्यूज नहीं रखी है, कोई अमल करके नहीं बताया कि हाँ भाई ये अमल, अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह की तहमीद या कोई और ऐसी चीज, नबियों के बारे में कोई बात को, ठीक है, बल्कि हुक्म, कमांड, ठीक है ना। अब हमारा क्या मामला है कि अगर कोई हमें बड़ा हुक्म देना, हम नाराज हो जाते हैं, कोई बड़ा हमें हुक्म दे, हम नाराज हो जाते हैं, हमें बहुत बुरा लगता है, ये मुझे क्यों, why are they ordering me to do something, why are they commanding me to do something, है ना, क्या मुसीबत है इनको, क्यों ये मुझे कमांड करते रहते हैं, ठीक है ना, हमें बुरा लगता है ना कमांड, हमें लफ्ज कमांड जो है ना, कोई भी लफ्ज हो जिसके अंदर कमांड हो, जिसके अंदर हुक्म हो, हमें बहुत बुरा लगता है। और अल्लाह ताला जो कि हमारे बनाने वाले हैं, जिनको कि पता है कि हमारे लिए सबसे फायदेमंद चीज क्या है, वो अपना कुरान, अपनी वही, वो किस चीज से शुरू कर रहे हैं, कमांड से शुरू कर रहे हैं, हुक्म से शुरू कर रहे हैं। क्यों? उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला का जो हुक्म होता है ना, वो अल्लाह के बंदों के लिए सबसे ज्यादा फायदा मंद चीज है। ये हुक्म जो है ना, सबसे ज्यादा बेनिफिट की सबसे बड़ी नेमत है ये अल्लाह ताला की। जैसे है ना घर, कितनी बड़ी नेमत है कि हमारे पास घर है, अगर घर ना होता तो हम होमलेस होते, राइट। कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की कि हमारे पास खाना है, अगर खाना ना होता तो हम भूखे होते। ये सब नेमतें हैं ना, और हमें लगता भी हाँ वाकई ये बड़ी नेमत है, हाँ घर है, खाना है, गाड़ी है, कपड़े हैं, बहन भाई हैं, अम्मी अब्बू हैं, नेमतें अल्लाह ताला की। लेकिन पता है सबसे बड़ी नेमत क्या है अल्लाह ताला की, ठीक है ना, अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत यह है जी? तो म्यूट कर दें भाई, मुझे करना पड़ेगा। कोई और है होस्ट? ठीक है, सबसे बड़ी नेमत क्या है? हिदायत, राइट। सब जानते हैं ना हिदायत अल्लाह ताला की। भाई हिदायत क्या है? हिदायत इज हुक्म, अल्लाह के हुक्म जो है ना, यही तो हिदायत है कि ये करो, ये करो, ये करो, यही तो हिदायत है। तो जो हुक्म है, कमांड्स हैं, ये अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है हमारे ऊपर। बात समझ में आई? ये जो कमांड्स होते हैं ना, जो हमारे, अच्छा अब इसको और जनरलाइज कर लें, जो हमारे अच्छे बड़े लोग जो होते हैं ना, जो नेक होते हैं और इल्म रखने वाले लोग होते हैं, वो हमें जो हुक्म करते हैं ना, ये सबसे बड़ी नेमत है हमारे ऊपर, सबसे बड़ी नेमत है। अब अल्लाह ताला सबसे बड़े, तो ये हुक्म जो है ना, ये अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है, इसके ऊपर हमें नाराज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नाराज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इकरा का हुक्म है ना, अच्छा अब हुक्म में से कौन सा हुक्म, ये नहीं कि नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ने का हुक्म तो कुरान मजीद में बहुत है, लेकिन सबसे पहला हुक्म नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं दिया, सबसे पहला हुक्म रोजा रखने का हुक्म नहीं दिया, राइट, ज़कात देने का हुक्म नहीं दिया, हज करने का हुक्म नहीं दिया, सच बोलने का भी हुक्म नहीं दिया, है ना, ये सब हुक्म है अल्लाह ताला के, लेकिन सबसे पहला हुक्म पढ़ो, इकरा, पढ़ो। क्यों पढ़ो? क्योंकि तुम्हें इल्म हासिल होगा, इल्म हासिल होगा, ठीक है ना। जब तक तुम्हें इल्म हासिल नहीं होगा, तुम सही काम कर ही नहीं सकते। जब तक तुम इल्म हासिल ना करो, तुम सही काम कर ही नहीं सकते। भाई पता होगा कि क्या सही काम है, तब तो तुम उसको कर सकोगे ना। अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि सही काम क्या है, तो तुम कैसे कर उसको करोगे, ठीक है ना। तो इल्म हासिल करना, असल में फिर क्या कंक्लूजन क्या निकला, इल्म हासिल कर सबसे जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है इल्म हासिल कर, ठीक है ना। क्योंकि जाहिल इंसान जो होता है ना, जिसके पास इल्म नहीं होता, वो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता ही नहीं क्या करना है, उसने इल्म ही नहीं हासिल किया, ठीक है ना। इल्म हासिल करने का तरीका सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं होता, बल्कि टीचर, टीचर से सीखना। अब वो टीचर आपको किताबें पढ़वाए, या टीचर आपको लेक्चर दे, टीचर आपको समझाए, राइट, सब कुछ इल्म हासिल करने के अंदर आ जाता है, ठीक है ना। तो इल्म हासिल करना, इसको हम इंशाल्लाह यहाँ पे क्लास को खत्म करते हैं। ये असहाबे सुफा जो हैं, इतनी कुर्बानियां क्यों दे रहे होते थे, उसकी रीजन एक तो ये होती थी कि इनके ऊपर जिम्मेदारियां नहीं थी जैसे कि दूसरे लोगों के ऊपर थी, तो दे कुड अफोर्ड इट, ठीक है ना, यानी घर नहीं था इनका, इनकी फैमिली नहीं थी, दे कुड अफोर्ड टू बी फुल टाइम स्टूडेंट्स। और दूसरी चीज क्या, कि अल्लाह ताला का पहला हुक्म जो है वो यही था कि तुम पढ़ो, इल्म हासिल करो, ठीक है ना। ये इल्म हासिल करते थे, फिर ये दूसरों को पढ़ाते, इस इल्म को जो है वो दूसरों तक फैलाते थे, ठीक है। यहाँ पे हम क्लास खत्म करते हैं। कोई सवाल अगर है तो हम थोड़ी देर आपको वेट कर सकते हैं, कोई पूछना चाहे कुछ। किसी को कुछ पूछना तो नहीं? इल्म हासिल करने के लिए पूछना भी बहुत जरूरी चीज है। ठीक है बेटा, सब हम कहते हैं वाह होता ना।